परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप श्रीमद् स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज स्वामी अखंडानंद जी महाराज यत कुल शिरोमणि श्री स्वामी विद्यानंद जी महाराज श्री श्री यमुना महाराणी जी वल्लभाधीश वल्लभ नारायण और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को दास का प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। जीवन के अंतिम क्षणों में हमारी चेतना केवल एक प्रभुमय ही हो तो ये कैसे संभव हो सकता है? इस पर श्री कृष्ण हमें पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म योग अष्टम अध्याय का हेतु ही मानव अपने जीवन संध्या को संवारे। जीवन संध्या को संवारने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है हमारा दिन भी सुधरे। यदि हमारे दिन भर की दिनचर्या में क्लेश है आतंक है तो हमारी संध्या सलूणी जिसको गुजराती में कहते हो वह आनंददायी नहीं हो सकती है। दिन भर की दिनचर्या में यदि मानव है वह सुरेख सरल सहज जीवन यापन करेगा तो मृत्यु के समय भी वो जीवन संध्या में भी वृत्तियां हैं यह आपाधापी नहीं करेंगी। सारी कथा जो है वह वृत्तियों की ही है। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक का पाठ करेंगे। 12वां श्लोक जो है उसमें परमात्मा ने बड़ा स्पष्ट करके समझा दिया। सर्वदाराणि संयम्य सर्वद्वार मनोरधि निरुद्ध च मूर्ध्यान् ध्यायात्मनः प्राणम् आस्तितो योग धारणाम् ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यप्रयाति त्यजन् देहम् सयाति परमां गतिम् दयाति परमां गतिं हरिः ओम। सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुद्ध्य च मूर्ध्नि आधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितः योगधारणम्। सर्वद्वाराणि ये हमारे शरीर में जो शरीर है उसको नवद्वारे पूरे देही कहते हैं। इस शरीर में नवद्वार हैं, गोलक जो कारण के हैं, आंखें हैं, नासिकाएं हैं, मुंह हैं, दो तो कान हैं, दो नेत्र हैं, दो नासिकाएं और मुख, ये सप्तद्वार हैं। और मलमूत्र त्याग के दो अधोद्वार ये नवद्वार हैं। ये जो द्वार है उनके बारे में ये समझना चाहिए स्पष्ट कि जैसे एक सीढ़ी होती है तो ये सीढ़ी है उसका उपयोग हम ऊपर चढ़ने के लिए करते हैं तो नीचे उतरने के लिए भी करते हैं। जिस सीढ़ी से आप नरक में जा सकते हो उससे स्वर्ग में भी जा सकते हो। तो जो द्वार बाहर खुलता है तो वो अंदर भी खुल सकता है। खुलने का तात्पर्य जिस द्वार से हम बाहर निकल सकते हैं उस द्वार से हम अंदर भी जा सकते हैं। सर्व द्वाराणि तो ये तमाम जो हमारे द्वार हैं उनको संयम्य कहा है, इनको बलात्कार करने के लिए नहीं कहा है, जबरदस्ती करने के लिए नहीं कहा है। यदि हमारी जीवन साधना में किसी भी विषय में जबरदस्ती की जाएगी तो वो दीर्घ काल पर्यंत शांति रहने की संभावना नहीं है। अब फूल को देखने से ही तो वहां पांव को जाने के लिए मन कहता है, जैसे आगे कह चुके हैं, ये जो हमारा शरीर है उसमें जो ज्ञान तंतु हैं, इनको एफरेंट्स कहते हैं। स्पेलिंग तो एक ही है किंतु एफरेंट्स एंड ईफरेंट्स ऐसे दो उच्चारण हैं। बाहर से आई हुई ज्ञान संज्ञाओं को मन में पहुंचाना और मन में उत्पन्न भाव पदार्थों को बाह्य तक लेकर के आना, ये वायरलेस वर्ल्ड के समान है। आंखों ने पुष्प को देखा, मन को कहा कि पुष्प सुंदर है, नहीं जो तय करता है मन, आंख ने तो प्रतिबिंबित किया है, मन सोच लेता है सुंदर है सेरिब्रम सेरिबेलम में, अब वही पांव कहता है वहां तक जाओ, जाने के पहले वही मुंह को बोलता है आ केटलू सरस, वो मुंह को बोलने के लिए बोलता है, वही हाथ को बोलता है तोड़ो, तोड़ने के बाद में बोलता है यहां रखो अपने जेब में रखो कोट में रखो सुनो। तो ये जो प्रतिक्रियाएं जो होती हैं इनके वजह है क्या, ये तो गोलक है, स्वे स्वे गोलके स्थित्वा सस्तब्धो भवती आनंदो भवती, ऐसे श्रुति ने कहा है। अपने अपने घर में रहने से उसे बड़ा ही आनंद होता है। ये अपने घर में क्या है, देखिए आप कहीं यात्रा में गए, चलो आपकी मनपसंद की यात्रा में गए, श्रीनाथ जी गए, बद्रीनाथ गए, यमुना जी ना आए, मथुरा में कहीं गए, इलाहाबाद गए, प्रयाग गए, केदारनाथ गए, कहीं भी गए, बड़ा आनंद है। सब लोग मिलके गए थे, 40 लोग महात्मा लोग भी साथ में गए, गाए नाचे सत्संग हुआ, किंतु जब घर में आते हो हास, ये हास क्या होता है बताइए। अपने आप को थोड़ा सोच लीजिए कि आप किसी शादी में जाते हैं, जब शादी में जाते हैं तो महिलाएं बहुत श्रृंगार कर लेती हैं, कान में बड़े झुमके लगा लेते हैं, नाक में नथनी पहन लेती है, गले में बड़ी कीमती मालाएं हैं, श्रृंगार तो होता ही है, अच्छे बड़े कीमती वस्त्र धारण करते हो, सिर में वेणी गजरा लगा लेते हो, कुछ विशेष शादी हो जैसे कि अपने बेटे की शादी है तो माँ खुद भी पार्लर चली जाती है, जितना श्रृंगार दुल्हन का होता है उतना दूल्हे की मां का भी होता है, वो भी फेशियल कराती है, वो भी पेडिक्योर मैनिक्योर कराती है, वैक्सिंग भी करा ले तो क्या आश्चर्य। हमारे हरिद्वार में तो 11,000 रुपया लगता है, ब्राइडल का अलग लगता है, तो यहां तो बंबई में अधिक ही लगता होगा। तो ये तमाम श्रृंगार कितना भी करा ले नारायण, किंतु जब शादी से वापस आते हो रात 10 11 12 1 2 बजे तो क्या उसी श्रृंगार के साथ में महिलाएं सोती हैं क्या, और पुरुष लोग भी एक पैंट पहनाए कोट पहनाए कोटी पहनाए मफलर पहनाए हाथ में ग्लव्स लगाए सर्दी के दिन में इतना करके जूता मोजा, तो क्या वो उसके साथ सो जाते हैं क्या, वो जो उसको निकाल दिया सब संभाल संभाल करके निकालते हैं गहने को ऐसे करके करके सब सब कितना जूड़ा जूड़ा बनाने के लिए, बोले स्वामी जी जूड़ा बनाने के लिए ही 2.5 घंटा लगता है, बाकी सब तो जल्दी निपटता है। तो वो जो जूड़ा है उसको खोल खाल करके जब शावर में स्नान कर ले और मिक्सी पहन ले और लुंगी पहन ले तो ये जो श्रृंगार था जो थोपा गया था वो थोपा गया है, वो हमारे जीवन के लिए उचित आनंद प्रदान करने वाला नहीं है। और जो थोपा भी गया है, मान लीजिए आप 3-3.5 घंटे श्रृंगार किए और किसी ने आपके श्रृंगार का प्रशंसा नहीं किया, हाँ यू लुक सो स्मार्ट, किसी एक ने बोल दिया तो लगता है 3.5 घंटा और 11,000 वसूल, पर किसी ने भी नहीं कहा, भीड़ भड़के में गए और आपको श्रृंगार करते करते पार्लर में देर लग गई, कुर्सी नहीं मिली, पीछे बैठना पड़ेगा, खड़ा रहने पड़ेगा, आई हेट दिस पार्टीज, मैं ये पार्टियां हैं उसको धिक्कार करती हूं, आपके अहंकार को पोषित करने के लिए श्रृंगार है। ये जो शारीरिक श्रृंगार है वो आपके अहंकार के पोषण के लिए है, न कि आपके रूप को पुष्ट करने के लिए, आपकी प्रतिष्ठा को पुष्ट करने के लिए नहीं है। किसी ने तो बोलना चाहिए फूल क्या मुकाव्य बहुत सारो लगे हो, नवी डिजाइन नो छे, ये नया डिजाइन का लोकेट है क्या, तो आपको खुशी होता है, चलो फूल लगाड़वानू सार्थक छे। तो ये जो हमारी बाह्य वृत्तियां हैं उनको भी यही कहा है कि आत्मा में रहना है उसका एक विशेष आनंद। जैसे कि दीपावली के समय हम रोशनी दिखने जाते हैं, एक दिया, दूसरा दिया, पांच दिया, पचास दिया, सौ दिया, हजार दिया, तो उसमें क्या विशेष है भाई, यहीं बैठ के देख लो भाई, इतने सारे दिए हैं, किंतु दिया है वो क्यों हमको आनंद देता है। हाँ, सवेरे सवेरे हम बोलते हैं हम ज्योत जलाते हैं, मत्था टेकते हैं, मस्तक झुकाते हैं ज्योत जला करके, तो ये लाइट चली गई, तो लाइट चली गई, लाइट चले जाने से दुख हो गया, आने से हा भी गई, आने से आनंद। तो ये लाइट में ऐसा क्या है जो चले जाने से दुख और आने से आनंद होता है? ये लाइट जो है वो आपका निजी स्वरूप है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो यम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। गीता जी ने भी यही कहा है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो ये आपका जो स्वरूप है वह प्रकाश का स्वरूप है, आलोक का स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है, विकास का स्वरूप है, चैतन्य का स्वरूप है, देवी पिता का स्वरूप है। आपका स्वरूप है वो रोने धोने का नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति, आपका स्वरूप आपकी आत्मा है, वहां ये सूर्य कुछ भी नहीं, न चंद्र तारकम चांद और तारे भी नहीं, नेमा न ईमा विद्युतो भाति, यहां बिजली नहीं चमकती है, कुतो यम अग्नि, अरे अग्नि, अग्नि कोई कई वाड़ी नो मुड़ो, ये अग्नि क्या है, कुछ नहीं, अरे तमेव भान्त अनुभाति सर्वम, आपके भीतर जो आत्मा का प्रकाश है उसी प्रकाश से समग्र विश्व प्रकाशित है। अभी महाराज जी क्या बोल रहे थे, महाराज जी के वक्तव्य में बड़ा सुंदर बात कही, देखो भाई आप अपनी निजी प्रकाश हैं, वो प्रकाश किससे प्रकाशित है, वो आपके आत्मा से प्रकाशित है, आत्मा परमात्मा से प्रकाशित है, अनुसंधान है। तो जो आत्मा है उसके प्रकाश के समक्ष ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं है। तो अपनी आत्मा का स्वरूप जो है वह प्रकाश है, असली अपना प्रकाश है वो बार प्रतिबिंबित है, जिसको देख करके आपको खुशी होती है, उसको और सरल करके समझा जा सकता है। आप मान लीजिए किसी चाली में रहते हो, मान लीजिए कि ग्रांड रोड में एक पन्नालाल टेरेस है, पार्वती मेंशन है, पार्वती मेंशन में पन्नालाल टेरेस में बहुत लोग रहते हैं, आप भी रहते हो, अड़ोस पड़ोस को नमस्ते किया नहीं किया कोई जरूरत नहीं, कोई पहले मंजिल में कोई पांचवी मंजिल में स्कूटर लेने के लिए कार लेने के लिए आते जाते हो तो लोगों को देखते हो, कभी भी उनसे बात नहीं किया, जय श्री कृष्ण ने कहा, अरे हमसे तो चींटियां अच्छी होती हैं, आपने देखा है चींटियां, और जब चलती है ऐसे करके जाती है, ऐसे करके, ये सवेरे सवेरे जो महात्मा चलने में मिलते हैं उनको जय श्री कृष्ण करो तो ऐसे बोलते हैं, देखते भी नहीं है, नमो नारायण तो भी देखते नहीं, क्या मुश्किल बात है भाई। हाँ, अरे वो चींटियां भी अच्छी हैं, एक दूसरे को नमस्ते नमस्ते करके जाती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है इस वस्तु को जानना, हमेशा जिस समाज में गठन नहीं वो देश राष्ट्र गठन वाला नहीं हो सकता है, उसके लिए पारिवारिक गठन चाहिए, परिवार में सब लोग मेल से रहेंगे तो समाज भाई मेल वाला होगा, समाज तो परिवार से बनता है, व्यक्ति से बनता है। तो कहने की बात क्या है कि हमारे मोहल्ले में रहने वाले से कभी हमने बात नहीं किया 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल, किंतु मान लीजिए कि किसी इत्तेफाक से आप मनाली चले गए, कुल्लू चले गए, शिमला चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए और वहां आपके पड़ोसी मिल गए, एकदम से उसको गले मिल जाएंगे। हाय तुम यहां बैठो, क्यों भाई? मेरा पड़ोस में मैं 27 साल से रहता हूं, मेरे नारायण तू एक दफे भी जय श्री कृष्ण नहीं बोला, अटलो उमड़ को क्या थी आवे हो? वो मेरे गांव का है, मेरे मोहल्ले का है, वो महात्मा लोग स्वामी अखंडानंद जी महाराज हैं, ध्रांगद्रा बहुत जाते थे। अब ध्रांगद्रा बड़ा प्रख्यात है वो घंटी घंटूड़ों के लिए, वहां का पत्थर है वो घर में पहले, आजकल सब रेडीमेड आ गया है इसलिए कुछ ये चिकचिक नहीं रही, कि तो पहले वो छोटा पत्थर उसका वो घर में वो चनानी दाल छे, भड़वानी छे, वो ढोकला करवाना छे, नहीं तो क्या हांडवो करवानो छे, तो उसके लिए वो सब छोटा घंटूड़ा। तो स्वामी जी महाराज बड़ा विनोद करते थे, बोलते थे कि एक महिला किनके घर में गई, वो गई होगी बड़ौदा में, अहमदाबाद में, बंबई में, तो देखा कि घंटूड़ो वो छोटी चक्की बहुत बढ़िया है। बोले बहुत बढ़िया है, कहां से लाई? बोले धांगद्रा का। हाय राम, वो घूंघट निकाल लिए। क्यों? मारा सासराना गांव नो छे, ये जो पत्थर है मेरे ससुराल के गांव का है। इतना संबंध लोग पहले बना करके रखते थे कि गांव का पत्थर भी है वह भी सम्माननीय है। तो जब यहां गोलक की बात करते हैं तो अपना जो है अपनत्व वो आनंद देता है, अपना पड़ोसी है कहीं विदेश में मिल गया तो खुशी होती है। तो जो अपना है वो अपना स्वरूप जो है वो आत्मा का स्वरूप है, वो आनंद का स्वरूप है, वो प्रकाश का स्वरूप है, वो आलोक का स्वरूप है, वो ज्ञान का स्वरूप है, वो प्रकाश का स्वरूप है, वो ज्योति है, वो शक्ति है, वो चेतना है। तो यहां जो कहा कि सर्वद्वाराणि संयम्य, तो आपको तमाम द्वार को संयम करना है। संयम क्या है? एक घड़े में 6 8 10 छेद कर लीजिए, नवरात्रि का जो गर्भो आता है उस घड़े में छेद रहते हैं। अब उसमें आप दूध डाल लीजिए नारायण, उसमें आप गन्ने का जूस डालिए, उसमें गंगा जल डालिए, रहेगा नहीं सब बाहर निकल जाएगा। तो आपकी जो चेतना है वो बहिर्मुख है, इंद्रियों से बाहर जा रही है, और मृत्यु के समय तो कम से कम चेतना को भीतर लाओ, नहीं तो बाहर के वातावरण, बाहर की दूषितता ही मन में लेकर के जाएंगे, अगला जन्म है वो दूषितता की नींव के ऊपर उत्पन्न होगा। आपके जीवन की प्रत्येक प्रतिक्रिया को देखना चाहिए कि मारू जीवन केम सुधरे, केम मारू मरण केम सुधरे। वो मरण जो है उसको उचित करने के लिए जीवन को उचित करना ही पड़ेगा। एक भोजन रखा है, जमन बोलते हैं भोजन, वो जो भोजन है उसके लिए तैयारी करनी पड़ी है। स्वामी जी आने वाले हैं, स्वामी जी क्या खाएंगे? अरे स्वामी जी तो रोटी और चावल खाते नहीं, तला हुआ मीठा खाते नहीं, तो क्या बनाया जाए? तो भाई 8 10 12 15 एक एक लड़कियां हैं वो कनाडा में, बोले कि मेरी मम्मी ने कहा है स्वामी जी छे इमने तलेलू नहीं खाशे, वो मीठा नहीं खाएंगे, रोटी चावल नहीं खाएंगे। बाजार में जितनी सब्जियां मिलती है तमाम लेके आती है, तमाम को एक 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 कटोरी में बोइल करके 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 एक 56 कटोरी कर देती है। अरे माई क्या है स्वामी जी, आप देख लो ना, मुझे पसंद है, फोटो खींच के मम्मी को भेज दूंगी। क्यों? मम्मी ने कहा है स्वामी जी तो खाता नहीं, तो जमा डाला भोग लगा। वो ठाकुर जी के सामने 6000 आइटम इसलिए रखते हो, ठाकुर जी खाता नहीं है इसलिए, ठाकुर जी खाने लग जाएगा तो जय श्री कृष्ण फटाफट पता भी दो। हाँ ये पता भी दो जो शब्द है बड़ा गड़बड़ है, पूजा पता भी लिधि निपटो, हाँ सत्संग पता भी लिधो। तो ये कहना है सर्व द्वाराणि संयम्य, तमाम द्वार को संयम, जबरदस्ती नहीं करना, बलात्कार नहीं करना है। फूल को देखा तो देखा है, प्रकृति है, खुशी है, किंतु उसके ऊपर अपने आप का अतिक्रमण नहीं है। लाओत्से के जीवन की बड़ी सुंदर घटना है कि लाओत्से है वो बड़े बहुत ही अल्पभाषी थे, बहुत कम बोलते, बोलना उनको अधिक पसंद नहीं था। तो उनके एक मित्र हैं, वो जानते थे, दोनों मिलकर के रोज भ्रमण के लिए जाते थे, और मित्र का भी एक और मित्र आ गया एक दिन, बोले हम लाओत्से के साथ में प्रातः भ्रमण में जाते हैं, तुम चलना पसंद खुशी से? तो तीनों चले। अधिकांश लोगों से मेरे प्रातः काल में आप जाओ, दुनिया भर की बातें वहां पर होती हैं, कहां से कहां तक, फ्रॉम पंपकिन टू पार्लियामेंट एंड देन टोमेटो सूप टू ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। विषय कोई नहीं है ऐसा जहां ओम प्रातः काल में चर्चा नहीं होती हो। सब लोग अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, महिलाएं अपनी बातें करती हैं, पुरुष लोग अपनी बात करते हैं, और कुछ जो बात नहीं करते वो भी मौन तो रहते नहीं, कान में प्लग लगा करके क्या सुनते रहते हैं, कुछ कुछ सुनते रहते हैं। तात्पर्य क्या है कि मौन है, अपने साथ में रहते नहीं है लोग। लाओस से हमेशा अपने साथ में रहने के आदि थे, यूज टू बी विथ सेल्फ। हम दुनिया के साथ में रहते हैं, अपने साथ में रहने का हमें अभ्यास नहीं। लाओस से हमेशा अपने ही साथ में रहने वाले थे, और उनका मित्र जानता था उनकी रुचि, तो दोनों चल पड़े। वो अपना मित्र जो नया आया था, चल लाओस के साथ में चलने का सौभाग्य मिलेगा। अब 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट हो गया तो वो दूसरे को खुजली हो रही थी, क्यों बोलते नहीं है, क्या बोलते, उठमणा माती आया वैसे, तो बोलते क्यों नहीं है, ये वैष्णु छे पगड़ी रसम से आया, क्या मतलब, बोलता नहीं है, बोलता नहीं, उसको खुजली, कुछ तो बोलना चाहिए, विषय तो कुछ हो। इतने में समुद्र के किनारे में धीरे से सूरज निकला, बारिश के दिन थे तो बादल भी बड़े सुंदर थे, तो बादल जो है काली घटाएं तो थी, उसमें कहीं थोड़ा लाल रंग भी थे, थोड़ा केसरी रंग थे, थोड़ा पीला था, उसके पीछे से सूर्य की किरणें अद्भुत लग रही थी, और सूर्य निकलते निकलते पूरा समुद्र है उसका जल है जैसे चांदी बिखरी है, इतना सुंदर हो गया। तो वो जो लाहौल के मित्र के मित्र, आ कितना सुंदर है, देखिए जैसे कि समुद्र में चांदी तो बिखर गई है, आ। और वैसे भी अंग्रेजी में कहा है कि देयर इज अ सिल्वर लाइन बिहाइंड एवरी ईच ब्लैक क्लाउड, हर काले बादल के पीछे एक सुंदर स्वर्ण रेखा, चमकती हुई रेखा रहती है, ऐसा ऐसा कुछ कर देखो, और चिड़ियों की आवाज, हाँ इतनी शांति में ये कलरव कितना मधुमय है। वो फिर वो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, वो दोनों चुप रहे, तो लगा कि मैंने कुछ गलती किया, तो चुप हो गए। वो दो चार मिनट अकेला ही बोला, दोनों ने कुछ प्रतिवाद नहीं किया है, तो चुप हो गया और फिर घर में आ गया। किंतु लाहौर से बड़े दुखी थे, उन्होंने दोस्त को कहा, ये तुम्हारे दोस्त को कल नहीं लेके आना, बहुत बड़बड़ाता है, इतना बड़बड़ाता है दिमाग खराब करके रख दिए। उन्होंने कहा, महाराज क्या बोला वो तो सारे मिलकर के 7.5 सेंटेंस भी नहीं बोला था, प्रातः काल कितना सुंदर है, यही कहा, देखिए वातावरण कितना मुखरित है, और कहा सूर्य की आभा है, अलौकिक चेतना वातावरण को कितना प्रतिबिंबित कर रही है इस जल में, चांदी के जल के माफिक। और चौथा सेंटेंस कहा कि पक्षियों के कलरव से ये वातावरण है अति मंगलमय हो रहा है। तो कतो कर उसको कुछ अक्ल नहीं है, हमारी आंख नहीं है क्या, हमने वो सूर्य को नहीं देखा था क्या, हमारे कान से क्या हमने पक्षियों के कलरव को नहीं सुना था क्या, क्या हमने उस समुद्र के जल को चांदी के माफक चमकना नहीं देखा था, तो उसके लिए बोलने की आवश्यकता क्या है। अरे अगर देखा है तो उसके अंदर में एक रूप हो जाओ, उसको पियो, उसको खाओ, उसमें मगन हो जाओ, जिस सौंदर्य को देख करके उसके भीतर आप चले जाएं और सौंदर्य को अपने भीतर घुसा लें, बस फिर वहां बोलना नहीं रह जाएगा। और बोलते क्यों हो, एक अपनी आदत से बोलते हो, कुछ बोलना चाहिए, खुजली होती है मुंह में, आदत से बोलते हो। हाँ पूज्य मुरारी बापू हैं, वो बहुत पुरानी बात को एक दिन बता रहे थे, स्वामी जी पहले तो हम लोग ये अहमदाबाद से भावनगर ट्रेन में ही जाते थे, फिर वहां से तल गाजरडा बस में चले जाते थे, तो बोले कि हमने भावनगर से 8 बजे ट्रेन चलती है अहमदाबाद से, तो पतिदेव और पत्नी एक बच्चे को लेकर आए, तो पतिदेव ऊपर की छत में जाकर के सो गया और पत्नी अपने बच्चे को लेकर बैठी। अब बोले मैं तो जप माला लेके 8 बजे तो सोना होता नहीं है, बोले करके मैं जप करता रहा। वो पत्नी अकेली चुप नहीं बैठ सकती है, तो मेरे को पूछ रही है तुम्हें महाराज छो, तो उनका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तुम्हें महाराज छो, तो बापू ने ऐसे बोलते हैं तो कई बार तो नहीं, तो महाराज छो तो हम क्या जाऊ छे भावनगर भावनगर जाने का। हाँ अरे तो हम भी भावनगर में रहते हैं, मेरा तो मैं कई भावनगर में, मेरे पति है ना मेरे को छोड़ने के लिए, उसको तकलीफ क्या है, वो बच्चा वहां कर रहा है, सोता नहीं है। वो सो नहीं रही है, न बच्चा उसको सोने देता है, तो उसको टाइम पास चाहिए, क्या करे, किसी को जो बात करे। फिर बाबू को, बाबू कहते हैं, फिर मेरे को एक बात और पूछ रही, अच्छा महाराज ते भावनगर कहीं कथा करवा जाओ छो? बोले ना बेन, कथा करिए छे, पर उधर भावनगर के नजदीक रहते हैं। अच्छा अच्छा, कथा करते हैं, सतनारायण की कथा भी करते हैं क्या? मैंने कहा नहीं करते ना, पर अगर कथा करते हैं तो करो ना, क्योंकि मेरी सास के ना मर गई ना, उसके पीछे उसकी बड़ी इच्छा थी कि सतनारायण की कथा कराऊं, तो मैं मैके में ही करा लूंगी, जब आप आते हो तो कथा तो सास को कहीं भी पहुंचेंगे। महाराज ना न कहता वो, अरे मेरी माँ मैं क्या करना हूं। फिर वो चुप रह गई, फिर बोली, अच्छा अभी कथा में माना बाना आवे? बोले माना बाना लोग बोक आते हैं क्या? हमने कहा हाँ ठीक आते हैं। ओह तब तो कमाई भी बहुत होती होगी। तो मैं चुप रहा, कुछ नहीं दिया। फिर वो अपने आप ही बोली, हाँ के रखो, हाँ के रखो, बताइए। बोले आपने हाँ के रखिए से, एक दिन मुरारी बाबू बोले थे, दिस वॉज अवर बिगिनिंग। हाँ अभी जो है ये मान मर्तबा बच गया, ये सब हो गया, वही उस समय भी वही कथा करते थे, राम कथा अभी भी राम कथा करते, किंतु अभी इस तरह से कोई बात नहीं करेगा। क्यों? एक सम्मान की भावना पैदा हुई। क्यों सम्मान की भावना हुई है? क्योंकि प्रसिद्धि हो गई है, वो ही मुरारी बापू है, वो ही राम कथा कर रहे हैं, किंतु प्रसिद्धि होकर के प्रसिद्धि के सिंहासन पर बैठा दिया है, तो अभी बात करना है तो थोड़ा मर्यादा से करना पड़ेगा। अरे पहले मर्यादा क्यों नहीं रखी? क्योंकि आपके इंद्रिय के द्वार है खुले, कुछ भी बह रहा है, वो जो मुंह से बोल रहा था सवेरे सवेरे, आ ये सूर्य कितना सुंदर है, अरे सूर्य है तुम्हारे बाप दादाओं के जन्म के पहले से सुंदर ही था, हर प्रातःकाल सुंदर ही होती है, हर प्रातःकाल सलोनी ही होती है, हर प्रातःकाल आनंददायक ही होती है, हर प्रातःकाल उष्मा से सवर ही होती है, किंतु हमको बिना बोले गुजारा होता नहीं, बिना कुछ कहे खुजली होती है, कुछ कुछ करना चाहिए। हाँ तो उसके बिना हमको तकलीफ होती है। तो लाओसे ने कहा कि यदि अगर उसको सूर्य है तो सचमुच में वास्तविक है, तो उसको क्या होना चाहिए? तद्रूप हो जाए, तन्मय हो जाए, सदाकार हो जाए, उसके अंदर में तल्लीन हो जाए, उसके अंदर में एक रूप हो जाए, और उस रूप को पिए, और उस रूप को पिए कैसे? जैसे कि पति और पत्नी का मिलन होता है तो उनके बीच में वो किसी का व्यवधान चाहते नहीं है, तो ऐसे ही आपका प्रभु का ये जो सूर्य उदय है ये प्रभु का स्वरूप है, वो सागर है वो भी परमात्मा का स्वरूप है, जो ये सौंदर्य है वो ईश्वर का स्वरूप है, वो जो सुंदर पुष्प है वो ईश्वर की कोमलता है, हाँ कि जो बादल की गर्जन है वो ईश्वर का ही निनाद है, हाँ जो मेघ धनुष के रंग है वो ईश्वर की शोभा है, ये पक्षियों का जो कलर है वही ईश्वर का संगीत है। तो उस ईश्वर के इस स्वरूप को देखने से उस ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की इबादत में, ईश्वर की उपासना में, ईश्वर की साधना में, ईश्वर के साथ तन्मयता में आपको बोलने की आवश्यकता क्या है? चुप हो जाए, क्योंकि जब बोल जाएंगे तो उसका मतलब है आप वहां नहीं है, आप कहीं बिखरे हुए हैं, आपके द्वार खुले हुए हैं, आप भटक गए हैं, आप इधर उधर हैं, आप वहां नहीं हैं। वहां अगर रहेंगे तो एक रूप स्थिर, ऐसे स्थिर जैसे शरीर को वो एक खेल बोलते हैं, मूर्ति वेगे चलो, वो 20 लोग घूमते रहेंगे, हाँ पीछे वाला ऐसे करेगा मूर्ति, तो जैसा है ऐसा खड़ा हो जाएगा मूर्ति, वेगे चलो चलना हिलना नहीं है, फिर मूर्ति ऐसा खड़ा हो जाएगा। मूर्ति बोलने से जो आदमी जैसे खड़ा है खड़ा हो जाएगा, वो मूर्त स्वरूप वो स्थिरता वो बाह्य स्थिरता कब आएगी? अंत स्थिरता से बाह्य स्थिरता आएगी। मूंछ वाले लोग कथा में आते हैं, बैठ के यूं करते रहते हैं मूंछ को, वो लड़कियां हैं वो अपनी चोटी को ऐसे करती रहती है, और जो बाल वाले बाबा लोग होते हैं वो बैठते हैं तो थोड़ा थोड़ी देर में अपने बालों को भी ऐसे करते रहते हैं, हाँ, और वो सेठ लोग हैं एक पांव के ऊपर एक पांव रख करके अपने पांव को ऐसे चलाते रहते हैं, घुटने को चलाते रहते हैं। ये शारीरिक चंचलता आपके मन की चंचलता का प्रतिबिंब है। मन स्थिर नहीं है तो शरीर स्थिर नहीं रहेगा। नारायण इधर गया उधर गया उधर गया उधर गया, ये कितना घूमते रहेंगे, हाँ वो इधर थोड़ा गोल नहीं है, भमरोच है, हाँ टिक करके रहता नहीं है, जाता ही रहता है। ये इधर की आपाधापी जो है मन की संपूर्ण चंचलता अस्थिरता का एक व्यवहार का एक दर्शन। इसलिए परमात्मा कहते हैं सर्व द्वाराणि संयम्य, तो तमाम द्वारों पर संयम में करो। पूज्य बापू जी महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने वो जो तीन बंदर बैठाए हैं कि भाई नहीं देखो बुरा, तो अच्छा नहीं देखो ऐसे तो नहीं कहा है, किंतु अच्छा देखो तो चुप रहो, उसको चुप रहो। कुछ महात्मा लोग कहते हैं आंख नाक कान खुला रखो, मुंडू बंद रखो। ये आंख से देखो, कान से भी सुनो, किंतु मुंह को बंद रखो। सारा झमेला यही होता है। ये मनोहृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में निरुद्ध स्थापित करके, निरोध अवरोध स्थापित, मन को दाएं बाएं नहीं, मन को हृदय में निरुद्ध करना है। जब मन हृदय में नहीं रहता है तो मन चंचल रहता है, मन में विचार उत्पन्न होते हैं। हम दो दिन से चिंतन कर रहे हैं, विचार ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हैं, क्योंकि विचार के नींव में भाव नहीं है। भाव रहे, प्रेम रहे, वो शालीनता रहे, कुलीनता रहे, तो दिव्यता रहे, तो ये विचार हैं, वो विचार भाव बन जाएंगे। किंतु स्वतंत्र रूप से जो विचार हैं, जिसके वो शिवजी के बारे में कहा, क्या कहा, आत्मा तम गिरिजा। ये पार्वती जी हैं, उनके मन में एक बार भाव हो गया, वो क्या भाव आ गया, विचार आ गया। देखिए ये विष्णु जी के वैकुंठ है, ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोग है, तुम ही हो निगोड़े, अपने पति को बोला तुम ही जो निगोड़े हो, नंग धड़ंग बैठते हो यहां पर अकेले, मेरी सहेलियां आए तो सहेलियां कहां बैठेंगी, सहेलियों के लिए क्या सुविधा है, मुझे बड़ा बुरा लगता है आपके पास लेके आने का, मैं कहां जाऊं, मेरा भी एक भवन बनाओ, पार्वती मेंशन बनाइए आप। तो भगवान ने कहा जैसे देवी आपकी इच्छा है, विश्वकर्मा जी से कहा कि देवी के लिए भवन बनाए, और बढ़िया से बढ़िया आर्किटेक्ट लेकर के आए, तो एक बढ़िया से बढ़िया आर्किटेक्ट के द्वारा कितने कमरे कितने सब बनवा दिए, इतने सुंदर, हर कमरे का रंग अलग, हर कमरे के पर्दे अलग, हर कमरे की स्टाइल अलग। फिर पार्वती जी ने कहा देखो जी हमारा मकान बनाए, लोगों को पता कैसे चलेगा, चट करो, हमारे पंजाब में होता है चट, गृह प्रवेश, हाँ हाउस वार्मिंग करना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ब्रह्मा जी को बुलाओ यज्ञ करेंगे, सबको बुलाओ। तो सब लोग आए तो सब लोग बोलते थे हाय पार्वती इट्स सो नाइस, तुम्हारी कोठी कितनी सुंदर है। तो पार्वती जी बोलते देखिए कोई एक रंग को दूसरी बार नहीं किया हमने, और कपड़ा देखिए आप, मैं कर कपड़ा विशेष रूप से मंगाया है हमने, मगन लाल ड्रेस वाला किया, स्टाइल सब देखो, कपड़े का स्टाइल सब कैसा है, सब व्यवस्था कितना सुंदर सुंदर। पार्वती जी सबको दिखा दी थी, इट्स हमारा ये है ना मेन बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है, और ये गणेश का है, कार्तिकेयन का है, ये तो गेस्ट रूम है, और स्वामी जी बाबा लोग आएंगे तो उनके लिए वो है। तो एक ही कमरा दिखाती, बोले कि देखो ये टेबल है ना, वो टेबल ऐसे टर्न करता है, ऐसे भी टर्न करता है, वो क्या क्या सब पार्वती, सब लोग गले मिलते, हाय सो स्वीट, यू आर सो लकी, सो नाइस, सब बोलते थे। अब ब्रह्मा जी एक एक करके आ गए, तो पार्वती जी ने उनको और बाबा जी को खड़ा किया था गेट के ऊपर में वेलकम करने के लिए, हमारे भगवान भोले भंडारी गेट पर खड़े होकर के सबको नमस्ते नमस्ते आइए आइए करते थे, उनका अभ्यास नहीं है खड़ा होने का, उनका तो सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, आज वो भी जैसे कहते हैं शांतम पद्मासनस्थम शशधरम गुटम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम शूलम वज्रम च खड़गम परशुम भयदम दक्षिणांगे वहंतम नागम पाशम च घंटा मृमरको सहितम शांकुशम वाम भागे नानालंकार दीप्तम स्फटिक मणि निभम पार्वतीशम नमामि। वो पद्मासन में बैठने के लिए युगों तक बैठ सकते हैं, बाबा जी को खड़ा कर दिया, बड़ा मुश्किल में बाबा जी खड़े हैं। ब्रह्मा जी को पार्वती जी ने पूछा है कि महाराज हाउ डू यू फाइंड अवर हाउस, हमारा घर कैसा लगता है आपको। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, बड़ा उत्साह से नहीं कहा। तो पार्वती जी दुखी हो गई, अरे बूढ़े समझता क्या है तू तो अपने आपको, हाँ तेरे आंख में कोई कमला हो गया है, पीलिया हो गया है, यज्ञ करी दक्षिणा ले और जा, ठंडा ठंडा उदास क्यों बोलता है। फिर पूछे क्यों आपको मकान जचा नहीं, ठीक ही है, ब्रह्मा जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है, जिनके द्वारा ये भू असा महाजन तपस अतल वितल पाताल तलातल 14 भुवन हो गए, उनको ये कोठी में क्या। आप देखो जिनके द्वारा कोमल कमल पुष्प है, जिनके द्वारा ये पहाड़ों की ये गिरिशृंगों की हिमशृंगों की सौंदर्य है, जिनके द्वारा इतने ये मयूर के नर्तन है, कोयल के कूक है, पक्षियों के कलरव है, उनके द्वारा ही प्रातः संध्या की सुंदर लालिमा, तो उनको अभी आप पूछ रहे हैं। तो तीसरी बार पूछ लिया, आप थोड़ा उदास हैं, कुछ मन में कड़वाट रहे क्या। बोले नहीं, सोच रहा हूं कि शायद इस पर शनि की दृष्टि। हाँ, व्हाट डू मीन, इस शनि की दृष्टि, ऐसे चश्मा निकाल के पूछा होगा, चश्मा में चांदी का रस्सी इधर लटका करके। हाँ, तो आपने क्या बोला, क्या बोला, फिर से बोलो, फिर से बोलो। ओ शनि की दृष्टि, शनि के, तो व्हाट हैपेंस, शनि 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 आएगा तो क्या होगा। वो शनि का मुंह काला है ना, तो मकान फिर जल जाता है। ओ आई डोंट बिलीव। अच्छा आप जाइए जाइए जाइए, ये गणेश तेरे पापा को बोल दरवाजा कर दे बंद और लोगों को मत आने दे। शिव जी को बोला दरवाजा बंद करो, बोलो आज का शो पूरा हो गया, बाद में देखेंगे, जा। लोगों को बोला पिछले दरवाजे से निकलो निकलो। शिव जी बोले अच्छा ठीक है, हम ध्यान करने। नहीं नहीं ध्यान नहीं है, वेरी सीरियस मैटर है। सीरियस मैटर क्या है, वो ब्रह्मा जी आए थे ना, हाँ आपने बुलाया था तो प्लेस वाट, बूढ़ा समझता नहीं क्या बोले। पता है उन्होंने क्या कहा, क्या कहा, हमारे मकान पर शनि की दृष्टि है। तो ब्रह्मा ने कहा तो होगी, आप भी ऐसे बोल रहे हो, कुछ बात भी समझा भी तो करो। देखो स्त्री का सबसे बड़ा आयुध है ना, वो यही है, आंख में से अश्रु। ये देवी क्या बोलती है, तो मुझे करना क्या है बताओ। अरे क्या करना है, जाओ शनि के पास अभी। देवी फोन कर लो, ईमेल कर लो, गणेश को भेज दो, कार्तिकेयन को भेज दो। हम जो कहते कभी सुनने की बात ही नहीं है, हमारी कोठी है, किसी को पसंद ही नहीं है। ब्रह्मा बोल रहे हैं उस पर शनि की नजर है, अब पर्सनली गो रू बर रू जाके बोलो उसको, तेरी नजर है क्या। अच्छा फिर वो बोलेंगे नजर है तो नजर बुलाटा बुलाटा समझता क्या है तू अपने आप को। और बोले कि नहीं है तो, हाँ ये कुछ समझने वाले नहीं है तो वरदान दे के आ जाना। अब भोले बाबा हैं गए भाई अपने श्रृंगी भृंगी को लेकर के नंदी पर गए। आ शनि देवता इतने आनंदे कि बिना बताए हमारे घर में आए, महादेव आज हमारे घर के सुराज, जय 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 शिव तुराज। आनंद हो गया है, देव देव महादेव, बड़ा आनंद हुआ है। उन्होंने अर्घ्य पाद्य चरण मरण धोए, फूल के आरती निकाली, महाराज जी बिराजो बिराजो, क्या सेवा करेंगे। अरे भाई तुम्हारे माताजी का भवन, हाँ मुझको निमंत्रण था ना, तो क्यों नहीं आया। अरे पता नहीं कोई लोग पसंद नहीं करेंगे, खामुखा है, कालमुखा क्यों आया, इसलिए मैंने नहीं आया। देखो देवी को किसी ने कहा है, भगवान है ना, देखो किसी ने नाम नहीं दिया, देवी को किसी ने कहा है कि तुम्हारी दृष्टि, अरे महाराज दृष्टि करने के लिए पूरी सारी सृष्टि है, मैं देवी के भवन में क्यों दृष्टि करता था। बस 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 इतना ही तय करने के लिए देवी ने हमको आपके यहां भेजा है। महाराज ये तो आप फोन करके पूछ सकते थे। अरे यार मैंने भी कहा था, देवी ने कहा रू ब रू जा। अच्छा तो भी क्या करना है, देवी ने कहा है वरदान देकर के, महाराज आपकी हमारे शनि लोक में आगमन, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है, बड़ी कृपा महाराज मुझे कुछ नहीं। नहीं भाई नहीं नहीं तू कुछ कर, फिर वो देवी बोलेंगे अगेन गो गो, फिर महा मुश्किल है, मां छुट्टी हुई है, तू बता। बोले महाराज मुझको पता है आपको सबसे प्यारा राम का नाम है, महादेव सतत जपत एक राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत करत राम। महादेव तो है वो राम के नाम को जानने वाले, तो प्रभु मुझको बताया आपको राम का नाम बहुत पसंद है, राम के नाम को छोड़ करके और क्या प्राइवेट में आपको पसंद है। अरे यार मेरे को कोई अच्छा सा गाना गाए तो नाच करना बहुत पसंद है। महाराज फिर मैं ही गाता हूं, मैं खोल पखवाज मृदंग बजाता हूं। तो बोले तरचा तेरे को नाच दिखा देता हूं, क्या बात है, हाँ तेरी भी खुशी हो जाएगी। देवी ने कहा है वरदान, तो तेरा वरदान भी हो जाएगा। और हमारे शनि देवता है मृदंग लेकर के बजाने लगे, दादा द्रिगड़ दादा द्रिगड़, था एकदम जोर से बजाने लगे, जड़ाडवी गलत जल प्रमा पावित चले, गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिताम डमट 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 निनाद वट डमर वयम चकार चंद्र तांडवम धनो तू न शिव स्वयं चकाकड़ा संभ्रम। और बाबा जी भूल गए क्या करना है, क्योंकि देवी है, उन्होंने आते आते कहा था अगर शनि कहता है कि मैं नजर नहीं हटाता हूं, अपना डबरू बजा देना, इतना जोर से बजाना हमको यहां पता हो जाएगा, तो वो क्या आग लगाएगा, हम खुद अपने मकान को जला देंगे। ये तो क्वेश्चन ऑफ ए प्रेस्टीज है, हम जलाएं तो जलाएं, कोई क्यों जलाए। तो ये तय हुआ था और बाबा जी भूल गए कि डमरू बजाने का हेतु क्या है। वो खड़े होकर के नाचने लगे, त्रिगड़धा त्रिगड़धा, ग्रांग 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 ग्रांग, धागे त्रिगड़ त्रिगड़धाई, अझुम अझुम। वो खड़े होकर के वो इतना जोर से डमरू बजाने लगे, नारायण पार्वती जी बोलती थी, गणेशिया यहां आओ, इधर आ, देख तेरे पापा इतने जोर से बजा रहे हैं, लाओ कितना है पेट्रोल पंप से डायरेक्ट लगाओ, एक पंप ड्र करके स्प्रे करो, होस पाइप से जला दो कोठी। और बाबा जी जब वापस आए वहां केवल धुआं रह गया था। बाबा जी ने बोला कि अच्छी बात है, पूछा ना जाए, चुप से बैठ करके ध्यान ही किया जाए। किंतु देवी खुद बोली, हाय सो नाइस, आपने इतना जोर का डमरू बजाया ना, हमको पता हो गया वो सनीड़ो है, वो अच्छा है, वो सनीड़ो है, वो अच्छे ऐसा ही है, वो नहीं मानने वाला कालमुखा, वो क्या जलाएगा, देखो हम ही ने जला दिया। बाबा जी बोले, बहुत अच्छा किया, ये हमारी बुद्धि है, ये हमारा विचार है, जहां भाव नहीं है, आत्मा तम गिरिजा मति ही, ये जो मति है वो जब आत्मा से विमुख हो जाती है, जब इंद्रियां हैं वो क्या मनोहृदय निरुद्ध, मन जो अगर हृदय के बाहर जाता है वो ऐसे ही आग लगा के आता है, किंतु मन हृदय में रहेगा फिर वो आग को जब गिर जाए, अपना व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं समझते हुए हमारे नारायण, हमारे प्रभु, हमारे शिव, हमारे भोले शंकर, हमारे देव, हमारे महादेव, उनकी शरणागति में तादात्म्य, उसके साथ में एक रूप, उनकी शरणागति जब स्वीकार कर लेती हैं तब ये क्लेश होने वाला नहीं। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं, सर्वद्वाराणी संयम, अतः आपकी इंद्रियों पर संयम रखो। सुंदर पुष्प है तो है, तो उसको वहीं से देखना, उसके नजदीक जाने के लिए जरूरत नहीं, उसको स्पर्श करने तक की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं सोचना आप जब स्पर्श करते हो तो पूरी सृष्टि के अंदर में आप दखल उत्पन्न करते हो। आपका हाथ जब ऐसे होता है तो पूरे वातावरण में आंदोलन उत्पन्न होता है, प्रकृति के प्राकृतिक क्रम के अंदर में दुविधा उत्पन्न करने की हमारी ये चेष्टाएं, हम करीना लेती जा, ऐसे हाथ करके करके जो बात करते हैं वो अपनी प्रकृति में विकृति है, वो विकृति प्राकृतिक प्रकृति में विकृतियां उत्पन्न करती है। ये हमारे पास में दो शब्द है, एक है प्रकृति एक है विकृति। तो ये प्रकृति क्या है कि जैसे कि एक इंसान है, वो इंसान अपने रूप में तो इंसान है, किंतु इंसान प्राकृतिक रूप से इंसान होते हुए भी अपने भीतर में वह प्राकृतिक रूप से पशु भी हो सकता है। हाँ, एक शेठ की कन्या थी, वो उसके मां मर गई है, कन्या बड़ी गुणी है, लिखी है, पढ़ी है, तो शेठ चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, तो उनके पार्टनर जो थे तीन बिजनेस में कहा, देखो हमारी बेटी है, वो तो आप ही की बेटी है, उनके लिए कुछ तय करो। तो क्या तय करना है लड़का, ठीक, बोले अगला संडे तक तय कर लेंगे। तो चारों ने, तीन पार्टनर सभी ने एक एक लड़का ढूंढ लिया। हाँ, एक तो ले लिया तो घाटकोपर में, हाँ दूसरा ले लिया भिवंडी में, तीसरा थाना में, और चौथा बॉम्बे सेंट्रल में। चार लड़के तय हो गए, लड़की है कि क्या करें। फिर वो प्रेमपुरी में आके किसी महात्मा से पूछे क्या करूं। महात्मा पहुंचे हुए थे, उनका देखो ये तुलसी पत्र लेके जाओ, यहां से नीचे उतरने में क्या मिलेगा उसके ऊपर में डाल देना। पहले बिल्ली मिल गई तो उस पर डाल दिया, नीचे उतरने में एक कुत्ता मिल गया तो उस पर डाल दिया, फिर एक गधा मिल गया उस पर डाल दिया। तो तीनों के तीनों अपनी लड़की के माफिक हो गए, और एक तो घर में थी, गुणी थी, रूपवती थी, शीलवती थी, वो बड़ी ही होशियार थी, चारों एक ही रूप, जैसे निर्मा का साबुन का पैकेट खोलो सब साबुन एक रूप एक रंग, कोई फर्क नहीं, रागिनी पद्मिनी के समान। वो ऐसे ही चार लड़कियां शादी हो गई। अब पिता का मन है भाई मेरी कौन सी, तो फिर महात्मा जी के, महात्मा बोले चिंता मत कर, एक भिवंडी और घाटकोपर चक्कर लगा के आ जा, थाना में बॉम्बे सेंट्रल में पता हो जाएगा। एक 15 दिन के बाद में वो सेठ चारों के घर में गए, पहले की सास ने क्या कहा, सास ने कहा आ हा 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 हा, आपकी बेटी, आपकी बेटी, क्या बताएं, देखिए आपकी बेटी जो है इतना काम करती, मेरे पहले 6 बहुएं जी, हाँ घसी नहीं, घुमड़े चुपड़वाने काम नहीं, नहीं बिना मतलब की कुछ काम के नहीं। ये आइए सारे घर का काम अकेली कर लेती है, किंतु अकेली रही ना बिना माँ की बेटी तो किसी ने टोका नहीं। एक आदत इतनी खराब है, क्या है, बस हर चीज को लात मारती चलती है, लात मारती। पता हो गया कौन छे, अच्छा दूसरी को बोला कि देखिए जो शेठ हैं बिजनेस से रात 8, 8:30, 9 कभी कभी 10, 11 बजे भी आ जाते हैं, मैं तो खाके पीके सो जाती हूँ। वो दरवाजा खड़खड़ाते हैं, पूरा मोहल्ला जागता है, मैं नहीं जागती हूँ। जब से आपकी बेटी घर में आई मेरे को सुख हो गया। क्यों? वो शेठ हैं, वो गली में घुसते उसको खुशबू आती है, ऐसा करके बस आने के पहले दरवाजा खोल देती है। बड़ी अच्छी भाई, बड़ी अच्छी, मगर क्या बताएं, अकेली रही ना दूसरी महिलाओं का मुंह पसंद नहीं। कोई मिलने आए तो हाउ हाउ करके लड़पीट करके उसको जब तक अपने घर तक छोड़ के नहीं आती, पता हो गया ये कौन है। अब तीसरे के घर में गए, तीसरे ने कहा आ हा 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 आपकी बेटी इतना घर साफ सुप साफ सुप रखती है, किंतु क्या बताएं माँ नहीं थी ना तो संस्कार थोड़ा एक, वो बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, अच्छा ही है। क्या खाना खाने बैठती है तो अपने बर्तन को चाटती रहती है, चाटती रहती है। वो पता हो गया कि मैडम म्याऊ है। तो चौथी है वो मेरी है, प्रकृति में हम जो हैं वो इंसान दिख सकते हैं, किंतु विकृति जो हमारे भीतर है वो उसको क्या करेंगे। कहा कि अपने मन को हृदय में जब लगाएंगे वो आपकी प्राकृत अवस्था है। तो मन जब हृदय के बाहर रहेगा वो विचार करेगा, वो ऐषणा करेगा, वो कामना करेगा, वो वासना उत्पन्न होगी, वो तृष्णा उत्पन्न होगी। यही इच्छाएं जो उत्पन्न होती है मन में वही आपकी हवस बन जाती है, वही आपको पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य करती है। पुनर्जन्म जो है वो शरीर का नहीं होता है, हमारी इच्छाओं का होता है, हमारी कामनाओं का होता है, हमारी वासनाओं का होता है। अतः मृत्यु के समय कोई वासना कोई कामना नहीं रहे, मन को हमेशा आत्मा में लगा करके रहने की कोशिश करो। कैसे करना है, क्या कहा भाई, सर्वद्वाराणि संयम, आंख से देखो किंतु उसको अप्रिसिएट तो ना करो, उसके लिए बुरा भी मत बोलो। हाँ, किसको जाकर के हाय इतना करने की क्या जरूरत है, दूर से रहो बैठो शांति से। हाँ किंतु बहुत उसको गुजरात बोलते उमड़ को, इतना उमड़ को दिखाने की भी आवश्यकता नहीं। वो एक बच्चा आया था 3-4 दिन पहले शाम को हमारे प्रवचन में सत्संग में, उसने आसन करके दिखाया था 3.5 साल से, ओडिशा के किसी बड़े गरीब गांव का बेटा, शिवानंद आश्रम में बहुत सेवा किया दासरथी, 30 साल तक मजदूर के माफिक काम किया, आसन सीखता था। उसके प्रारंभ में किसके साथ यहाँ गया, अच्छा है 35-40 हजार रुपया कमा लेता है। उसको मैंने बोला तू बंबई में क्या सीखा, बोले यही सीखा कि किसी भी अनजान आदमी से बात नहीं करना, दूसरा ये सीखा कि किसी के सामने थोड़ा ऐसे बैठ के हंसना भी नहीं, इन दोनों का गलत अर्थ होता है। ये है बिना काम के मैंने बोलता नहीं, बिना काम के दाया बाया देखता नहीं, अपने घर से सीधा काम पर जाता हूं, सीधा वापस आता हूं। और तीसरा मुझे एहसास हो गया कि मैंने 30 साल गुरु के आश्रम में जितना सेवा किया है हाँ उसका फल मुझे आज मिल रहा है। हाँ वहां पर इतने आटे की बोरियां उठाई हैं, तेल की बोरियां उठाई हैं, हाँ वो तेल के तेल पीलना है मशीन के अंदर में, और आटा गेहूं पीस करके आटा उठाना है, नीचे से ऊपर उठाओ ऊपर से नीचे लाओ, इतना मेरे को सेवा करने का सौभाग्य गुरु महाराज दिए। यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में मेरे को अपने घर में छोड़ देते हैं, नहीं तो दूसरी कक्षा में भी पहुंचा देते हैं सेठ लोग, अपने घर में चांदी के बर्तनों में हमको नाश्ता दे देते हैं। मैंने कभी किसके घर में नाश्ता नहीं किया, मैं बोलता हूं नहीं जी मैं कर लूंगा। ये देखिए एक बात है, क्योंकि हमारे पास तमाम सुविधा है, सुविधा का भोग नहीं करना, चांदी के बर्तन में भी खाना दे तो नहीं खाना, ये मेरा रुचि। तो ये होता है मनोरुधि निरुद्ध सर्वद्वाराणि संयम्य, खाने के लिए 50 वस्तु हो मगर मेरी रुचि हो मेरी इच्छा हो तभी मैं खाऊं, नहीं तो मैं नहीं खाऊं। किंतु होता नहीं, बड़ा मुश्किल है। हमारे एक बाबा जी हैं केमिकल इंजीनियर रहे, अभी तो 72 साल की उम्र है, उत्तरकाशी में, हम जाके उनके पास 6 महीना रहे थे। तो एक कुटिया में मैं रहता हूँ, एक कुटिया में वो रहते हैं। एक दिन रात चला इतना जोर से चिल्लाए मार सलित मार,
पता नहीं मैं सोचा कौन आ गया, मैं बाहर आ गया तो अकेले बैठे थे। मैंने बोला महाराज जी क्या हो गया, बोले साला कैच छोड़ दिया। बताइए वो क्रिकेट में हमारे हिंदुस्तान के किसी लड़के ने कैच छोड़ दिया, उसको 10 गाली निकाल करके इधर उधर दो चार चीज को तोड़ फोड़ दिया। वो ऑस्ट्रेलिया वाले पिछले जो हमारे ये अहमदाबाद में आए थे, वो पॉन्टिफ ना पता नहीं कौन, वो गुस्से में रहा तो जाकर के टीवी तोड़ करके आ गया था। तो ये वो क्रिकेटर वहां टीवी तोड़ के आ गया, और ये बाबा जी हैं उत्तरकाशी में रहते हैं, बड़ी दहाड़ी बटी है, जाट जटा बड़ी हुई है, लंगोटी बांधते हैं, मगर वो कैच छोड़ दिया तो 4 गाली देके वो भी टीवी तोड़ के रख दिया। बोले मनोरुद्ध निरुद्ध सर्व द्वाराणि संयम्य, वो द्वार में संयम। खुशी है भाई, हाँ जीत गए तो खुशी तो होती ही है। अहमदाबाद में सुना कल रात में 1 करोड़ का लोगों ने आइसक्रीम खा लिया और 1 करोड़ के पटाखे भी फोड़ लिए, तो ये बुरी बात तो नहीं है। अपने को भारत है, हम भारत से लगे हुए हैं, भारत हमारी माटी है, तो हमारी विजय हो तो खुशी होती है। कथा में भी क्रिकेट आ गया देखो, तो कहने का मतलब क्या, क्योंकि दोनों महापुरुष खुशी हो जाए कहने का तात्पर्य क्या है। हम भी कल रात अपने कमरे में इतना शोर हुआ, क्या हो गया भाई, कोई मारपीट हो गई, मैंने हट से बाहर आया देखा कोई भी नहीं है, फिर देखा कि क्रिकेट के जो कमरा है उसमें सारी जनता बैठी हुई है, उसमें एक महात्मा थे दूसरे महात्मा नहीं थे। तो जो महात्मा बैठे थे उनको देखकर मुझे खुशी हुई, जो दूसरे महात्मा नहीं थे उनके लिए हमने पूछा वो क्यों नहीं आए, बोले कि वो जो हैं वो अपने आश्रम में रहते तो देखते हैं, दूसरे आश्रम में नहीं देखते हैं। तो देखिए ये बात भी हमारे जीवन में संयम वाली बात है। हाँ या दम्भ वाली भी हो सकती, दोनों तरफ से है। हाँ क्या कहा, मूर्धन ध्यायात्मन प्राण आस्तितो योगधारणाम, तो मन को हृदय में स्थिर करके प्राण को मस्तक में, इस पर विचार कल करेंगे। यह वाणी को विराम करते हैं। परमात्मा सभी का मंगल करे, सभी का शुभ करे, सभी का कल्याण करे। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद। आपके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।